नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र तिवारी एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर को लेकर।
और नरेंद्र का साथ दे रही हूं मैं आपकी दोस्त अंजलि जोशी।
अंजलि, आज तुम कार्यक्रम मिस करते करते बची हो, इतनी देर क्यों लगा दी?
क्या बताऊं नरेंद्र, आज रास्ते में एक महिला मिल गई।
तो
वो गाँव से यहाँ शहर में अपने पति को ढूंढने आई थी। मुझे अपने पति का पता दिखाकर उस जगह के बारे में पूछ रही थी।
अच्छा, फिर?
बड़ी परेशान थी वो, कह रही थी पति को 2 साल हो गए गांव से शहर आए हुए, और इतने समय में पति एक बार भी मिलने गांव नहीं आया, और अभी उसका कोई अता पता भी नहीं है।
भाई सचमुच, अगर हमारे कुछ प्रवासी भाई ऐसा करते हैं, शहर में आकर अपने परिवार को भूल जाते हैं, तो भाई हम तो उनसे बहुत नाराज हैं।
हाँ, और इसीलिए आज के 23वें एपिसोड में हम इसी सिलसिले पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले धारावाहिक शहर की ओर की 23वीं कड़ी। दोस्तों, पिछले अंक में आपने सुना, मधु फूलमती से अपने मायके जाने की इजाजत मांगती है, लेकिन फूलमती मना कर देती है। हरेंद्र को मीरा के साथ किए गए अपने पुराने व्यवहार पर पश्चाताप होता है, और वो मदिरा पान छोड़ने का वादा करता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
अरे राजेश, यहाँ?
राजेश, राजेश, हाय।
ओ कविता, हाय।
तुम यहाँ स्टेशन पे क्या कर रहे हो?
क्यों भाई, क्या मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पर नहीं आ सकता?
अरे नहीं, आ सकते हो, पर
दरअसल मेरी बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो मुझे लगा क्यों ना आज ट्रेन से जाया जाए।
ओके।
और सुनाओ, कोई नई खबर?
हाँ, खबर तो है, पता है मैंने करेस्पोंडेंस से एडमिशन ले लिया है।
अच्छा, वेरी गुड।
और साथ में जो तुमने सेल्स और मार्केटिंग का कोर्स बताया था ना?
हाँ।
वो भी शुरू कर दिया है, उसकी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, और अभी 2 हफ्ते में एग्जाम्स भी हैं।
इसीलिए आजकल ड्यूटी के बाद दिखाई नहीं देती हूँ।
अरे क्या बताऊँ, एग्जाम्स की ना बहुत टेंशन हो रही है, इसलिए जो भी वक्त मिलता है बस पढ़ाई में लगा देती हूँ।
वैसे अगर किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताना जरूर।
जरूर बताऊंगी। अच्छा, ट्रेन आ गई है, मैं आगे चलती हूँ।
आगे क्यों?
अरे भाई, लेडीज कंपार्टमेंट आगे आएगा।
ओ हाँ, ओके ठीक है, फिर आगे स्टेशन पर मिलते हैं, ऑफिस साथ ही चलते हैं। हाँ
ठीक है।
बौजी, बौजी,
क्या हुआ छुटकी?
बौजी, पता है मैंने आज किसको देखा?
किसको?
उमेश भैजी को।
उमेश भैजी को यहाँ गांव में?
हाँ,
पर वो तो दिल्ली में है।
नहीं बौजी, मैंने खुद देखा उन्हें स्कूल से आते वक्त, वो परचून की दुकान पर कुछ खरीद रहे थे।
अच्छा अच्छा छुटकी
जी,
तू मेरे साथ उमेश भैजी की यहाँ तक चल सकती है?
क्यों?
वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, अभी ये बता तू चलेगी या नहीं।
ठीक है, चल दूंगी।
चल फिर, ठीक है। एक काम कर, तू जल्दी से अपना ये बैग अंदर रख कर आ, फिर चलते हैं।
ठीक है।
अरे चंदर।
जी बलराम भैया।
अरे क्या कर रहा है तू, ये प्याज जरा बारीकी से काट, इतना मोटा मोटा काटेगा तो मसाला कैसे बनेगा है? अच्छा एक काम कर, ये सब्जियां मुझे दे, मैं काटता हूँ।
बलराम भैया, मैं काट तो रहा हूँ, फिर आपको खाना बनाने में देर हो जाएगी।
अरे नहीं होगी भैया, क्योंकि आज का खाना तू बनाएगा।
मगर बलराम भैया, मुझे तो अच्छी तरह खाना बनाना आता ही नहीं, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो?
अरे कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा भैया, हैं? क्या होगा, थोड़ा सा नमक मिर्ची तो ज्यादा पड़ जाएगा ना, तू घबरा मत, मैं सब संभाल लूंगा, और वैसे भी हर किसी के हाथ के खाने का एक अपना ही स्वाद होता है, समझे? तो आज ग्राहकों को तेरे हाथ का स्वाद चखने दे। हाँ
लेकिन बलराम भैया।
अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हाँ ये बात तय हो गई है कि आज का खाना तू बना रहा है।
ठीक है बलराम भैया, मैं कोशिश करता हूँ।
हाँ शाबाश, ये हुई ना बात।
उमेश भैजी, भैजी।
अरे छुटकी। बौजी आप? नमस्ते।
नमस्ते।
आइए ना, अंदर आइए।
जी।
बैठिए, बोलिए कैसे आना हुआ?
उमेश भैजी, आप कब आए दिल्ली से?
बस दिवाली के लिए आया था।
मैंने आपको परचून की दुकान पर देखा था।
हाँ हाँ, कुछ सामान लेने गया था।
भैजी, उनकी कोई खबर?
चंदर की?
जी।
बौजी चंदर से अभी बात नहीं हो पाई मेरी, कोई नंबर ही नहीं दिया उसने, आपको फोन नहीं करता क्या?
नहीं, जब से शहर गए हैं तब से सिर्फ 2 बार ही बात हो पाई है। वो बता रहे थे कि कहीं ढाबे पर उनकी नौकरी लग गई है।
हाँ कल्पना से पता चला था मुझे, उनके साथ संपर्क में है, मुझे तो फोन भी नहीं करता।
ये कल्पना?
कल्पना बौजी, अरे जिनके यहाँ दिल्ली में हम ठहरे थे।
अच्छा।
मैं तो काम की वजह से जल्दी ही उनके यहाँ से निकल गया था, पर चंदर तब भी वहीं था। अच्छी खासी जान पहचान हो गई ये दोनों में।
अच्छा,
मेरे ख्याल से जाना आना रहता है उसका वहाँ, आपको बताया नहीं उसने?
नहीं।
अजीब है।
बौजी, हाँ, मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ, यहीं पास में रहती है, निकलते समय मुझे आवाज दे देना।
हाँ।
अच्छा भैजी, चलती हूँ।
ठीक है। अच्छा भौजी, चंदर का कोई फोन नंबर है?
हाँ है, मैं आपको दे दूंगी।
मैंने सोचा वो भी शायद दिवाली पे घर आएगा, तो यहीं गांव में उससे मुलाकात होगी।
नहीं, उनको छुट्टी ही नहीं मिली, अब वहाँ अकेले ही दिवाली मनाई होगी उन्होंने।
अरे नहीं भौजी, शहर में कोई अकेला थोड़े ही होता है, दोस्त होते हैं। अब कल्पना तो है ही, उसके यहाँ मना ली होगी दिवाली।
कल्पना? अच्छा भैजी, आप दिल्ली कब वापस जा रहे हैं?
बस दो चार दिन में निकल जाऊंगा।
आपको एक चिट्ठी देनी है, क्या आप वो चिट्ठी उन तक पहुंचा पाएंगे?
अरे उसमें क्या है बौजी, जरूर दूंगा।
जी
बौजी, आप निराश मत होइए, मैं उससे कह दूंगा आपको फोन करता रहे।
ठीक है।
ये हो गया धनिया। अब भाई दाल तो सब कुछ दिया है, मगर पता नहीं खाना बना कैसा होगा। माता रानी, आज तो बस मेरी लाज रख लेना, मेरा बनाया हुआ खाना सबको पसंद आ जाए बस।
हाँ भैया चंदर, अरे बन गया खाना?
जी बलराम भैया, पर बना कैसा है ये पता नहीं।
अरे अभी पता लगा लेते हैं। भाई खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही, जरा चक्कर देखूं। अरे वाह चंदर, अरे तूने तो कमाल ही कर दिया।
सच बलराम भैया, क्या खाना सचमुच अच्छा बना है?
अरे अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बना है भैया। देखा, मैं ना कहता था कि तुम बहुत अच्छा खाना बना सकते हो। हाँ
बलराम भैया, ये सब तो आपकी वजह से हो पाया है, जो आपने मुझ पर भरोसा करके मुझे खाना बनाने के लिए कहा।
अच्छा अब ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर, और फटाफट वो एक दाल पनीर और एक शाही पनीर का ऑर्डर पूरा कर।
जी बलराम भैया, अभी लगा देता हूँ।
ये मधु के कमरे का दरवाजा बंद क्यों है? मधु, मधु, क्या हुआ मधु, तू ऐसे क्यों रो रही है?
दीदी।
अरे मधु क्या हुआ?
दीदी वो उमेश भैजी है ना?
कौन, वो चंदर का दोस्त?
हाँ, वो बता रहे थे कि उनकी शहर में किसी कल्पना नाम की औरत से जान पहचान हो गई है।
तो
जब वो गांव से दिल्ली गए थे ना, उसके घर पर ही रुके थे वो।
हाँ तो इसमें रोने वाली बात कौन सी है?
दीदी उमेश भैजी की बातों से लग रहा था कि वो दोनों मिलते रहते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है दीदी, मुझे पता नहीं कैसे कैसे अजीब ख्याल आ रहे हैं।
अरे पगली, तू भी ना कुछ भी सोचने लगती है। अरे अब अगर चंदर शहर गया है तो किसी ना किसी के यहाँ तो रुकेगा ना, और शहर में ये औरतों से बात करना आम बात होती है।
लेकिन दीदी वो मुझसे अब प्यार से बात नहीं करते, पिछली बार फोन पर बात की तो मुझे बहुत ताना मार रहे थे वो।
देख मधु, चंदर वहाँ काम करने गया है और घर से भी दूर है, और जैसे तू यहाँ काम को लेकर चिढ़ जाती है वैसे वो भी चिढ़ जाता होगा। अब गुस्सा निकाले तो किस पे निकाले? हाँ
पर दीदी मैं तो।
और तू उस नालायक उमेश की बात पे तो मत जा, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तू उठते बैठते हर वक्त चंदर के बारे में सोचती रहती है, इसलिए तेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं।
तो मैं क्या करूं दीदी?
तू अपना ध्यान दूसरे कामों में लगाना शुरू कर।
मेरा मन नहीं लगता इन घर के कामों में।
अरे तो कोई नया काम ढूंढ ले, यहाँ कितनी औरतें हैं जिन्होंने अपना खुद का काम शुरू किया है, उनसे जाके बात तो कर, जानने की कोशिश तो कर के काम कैसे किया जाता है।
उससे क्या होगा?
अरे घर में चार पैसे आ जाएंगे और तेरा मन भी हल्का हो जाएगा।
पर मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ दीदी।
तू नीलम दीदी को जानती है?
वही जो विधवा है और वो जो अचार पापड़ और मुरब्बे का काम करती हैं।
हाँ वही, पता है काफी सारी औरतें उनके पास काम करती हैं, और बहुत सी औरतें तो ऐसी हैं जो उनसे घर के लिए भी काम ले आती हैं।
लेकिन मैं तो ये सब बनाना नहीं जानती हूँ दीदी।
अरे तू जाकर मिल तो ले उनसे।
आप कहती है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन दीदी अगर मेरा शक सही निकला और वो सचमुच वहाँ किसी और औरत के साथ रहने लगे तो।
अरे मधु कुछ नहीं होगा, अगर तुझे अभी भी शक है तो तू चंदर से बात क्यों नहीं कर लेती इस बारे में?
मैंने एक चिट्ठी लिखी है उनको, उमेश भैजी के साथ भिजवा दूंगी उन्हें।
तो फिर जब चंदर का जवाब आएगा तब इसके बारे में सोचेंगे। चल अब रोना बंद कर और सो जा, कल नीलम दीदी के यहाँ जरूर चले जाना, ठीक है?
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जब चले शहर की ओर,
और आप लोगों के विचारों को हम तक पहुंचाने के लिए हेवलवाणी चंबा, मंदाकिनी की आवाज भणज और दिल्ली और मुंबई के हमारे सामुदायिक संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कार्यक्रम में दी जाने वाली जानकारी के सिलसिले में अगर आपके कोई सवाल हैं, प्रश्न हैं, तो आप हमसे 9197176782 पर संपर्क कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब चलते हैं गांव में रह रही उन महिलाओं के पास जिनके पति काम की तलाश में शहर आ गए हैं। हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने उनसे पूछा कि अगर शहर में आने के बाद उनके पति उन्हें भूल जाएं और कोई संपर्क ना करें तो वो क्या करेंगी। आइए सुनते हैं उनके विचार।
पहले हम उनको मनाएंगे अच्छे ढंग से, चलो घर चलो, हमारे बच्चे हैं, सब कुछ हैं, क्यों छोड़े, तुम्हारे माँ बाप हैं, बाप हैं, सब कुछ हैं, चलो जब नहीं आएंगे तब पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे उनके भविष्य के लिए, कहीं दूध बेचेंगे, चाहे खेती करेंगे, चाहे कोई नौकरी करेंगे, पर अपने बच्चों के लिए उनकी भविष्य जरूर सुधारेंगे। हम पहले गुमशुदा में देंगे, तलाश करेंगे उनके, और मिल गए तो मनाने की कोशिश करेंगे, न माने तो फिर कुछ करेंगे बच्चों के लिए, कुछ बिजनेस करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बनाएंगे उनको कुछ।
ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर हो भी गया तो फोन करके पता कर सकते हैं, अगर नहीं आए तो मैं पार्लर चला सकती हूँ और अपना घर का खुद बच्चों का लालन पालन कर सकती हूँ।
पहले तो ऐसे होगा नहीं, अगर हो भी गया तो मैंने M.Com किया है और कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी अपनी फैमिली को चलाने के लिए।
दोस्तों कहते हैं हिम्मत और हौसलों से हर जंग जीती जा सकती है, चाहे लड़ाई का मैदान हो या जिंदगी की बाजी।
जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जिनके पति गांव से शहर आए और शहर की भीड़ में कहीं खो गए, और उसके बाद उन महिला के सामने जो हालात आए उसका उन्होंने कैसे सामना किया, ये सब सुनते हैं खुद इन्हीं महिला की जबानी हमारे अगले सेगमेंट कुछ विश्वास में।
मेरा नाम चंद्र देवी, गांव का नाम कोटियाट, मैं आप हूँ, मेरा दुई नाव न्यालन, और आप तो 14 साल हुए इनका कि पता ही नहीं मरी हुआ कि बची हुआ, तापुर दिन हम तान लगाने लग गया, भाई मिन्थ मजूर कर दूँ तब जाते मैं अपने बच्चों को पानो लग गया, अब चूलों समय चूल्हा बेचू तब आप खर्च हम तान चलाऊ पड़ी अब तान मेरे बेचू कि जब किताबें खर्च ले तू तब जाए जब जब आलू तब अपनी किताबें खर्च लिया तब इधर पढ़ कोई साधन नहीं, कख बिट भाई नहीं आ, कख बिट बाबू नहीं आ, कख बिट मैत बिट कोई साधन ही नहीं आ, सही सिर बिट कोई नहीं आ, ससुर मेर ससुर कोई मत बोलिए मैं हम उधर जाऊँ उबर जाऊँ कोई वही नहीं आ, जबकि पिनसी ना हूँ कि डोखर भी फंडू गाड़ी मैं तब मेरा लुकारा देवन करे अपने परिशुदा का अपने बच्चों मैं इन मिन्थ मजूर के अपने भैंसों बांधियो तब भैंस पिछाड़ मैं अपने कख दूध लाऊ तब वही पिछाड़ मैं अपने खर्च चलाऊँ अपने बच्चों पहन दिन मैं काम कर दूँ रात में ठोपर बुन दूँ तब दस पाँच पाँच लो दिन तब वो पिछाड़ मैं अपने बच्चों फीस हो दे अपने खर्चों चलाऊँ दिक्कत यह ना आए तब मैं लुकार कूड़ों पर मजूरी करे तब मैं वखन उन फीस ले आयो तब डरेस बनाया तब फिर जब भैंसु रही मैम तब दूध ला अपने खाना निखार आप निखाए अपने बच्चों भी नहीं दिने कि फणो दिया बेटा वम एक बूंद दूधों को लगौला तुम्हार फीस उठ ली तब मैं तुम्हार फीस देलू तुम तो जुनख बनौलू तो ये नहीं कहीं परसुद कह मैंने अपने बच्चे पढ़ाई पढ़ो लगी आज पढ़ी भी नहीं बालगड़ा भी आ आज 13-14 साल ये लगी तब मैं आज ये भी पढ़ो लगी कि तब मैं मिन्त कौलू तब जाते अपने घरों खर्च ये नहीं होगा।
नरेन, जब गांव का कोई व्यक्ति शहर की भीड़ में कहीं खो जाता है और उसके परिवार वालों को उसकी कोई खबर नहीं मिलती तो ऐसे में उन लोगों की क्या हालत होती होगी?
हाँ अंजलि, आखिर जिसके ऊपर वो लोग निर्भर हैं, अगर वो ही शहर की भीड़ में कहीं खो जाता है तो वो लोग कर भी क्या सकते हैं, उनके पास तो इंतजार के अलावा कोई चारा भी नहीं होता।
नहीं नरेन, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इंतजार करना इसका सही हल है।
तो फिर
इस परिस्थिति का सामना करने का सही तरीका तो भैजी ही बता सकते हैं।
तो ठीक है, बुलाते हैं भैजी को।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी।
नमस्कार अंजलि। नमस्कार नरेन, कैसे हो भाई दोनों?
भैजी हम दोनों तो बिल्कुल ठीक हैं। भैजी, आज हम आपसे ऐसी परिस्थिति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका सामना किसी भी प्रवासी दोस्त के परिवार को न करना पड़े।
अच्छा
भैजी, जब कोई भी प्रवासी शहर की भीड़ भाड़ में कहीं गुम हो जाता है और उसके घर वालों को उसकी कोई खबर नहीं मिलती, तो ऐसे में उसके परिवार वाले क्या करें?
अंजलि, ये बड़ा ही गंभीर प्रश्न है और इसका जवाब भी उतना ही गंभीर और ध्यान से सुनने योग्य है।
जी भैजी।
अब भगवान न करे कि आपके घर से कोई शहर जाए और फिर न तो खुद लौटे और न ही उसकी कोई खबर आए, तो ऐसे में सबसे पहले तो ये बात कि हिम्मत नहीं हारना है और उस परिवार में जो भी उसके बाद घर संभालने लायक है, चाहे वो महिला है या पुरुष, चाहे वो उस प्रवासी की पत्नी है या भाई, उसे घर की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेनी चाहिए।
लेकिन भैजी, आपको नहीं लगता कि उन्हें मिलकर अपने परिवार के उस सदस्य को तलाश करना चाहिए?
बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन समझदारी के साथ। यहाँ पर जरूरत है घर और परिवार को संभालते हुए उस सदस्य को तलाश करने की, और इसके लिए किसी को तो आगे आना ही होगा और घर परिवार की जिम्मेदारी उसे अपने कंधों पर लेनी होगी।
लेकिन भैजी, एक महिला के लिए तो ये काफी मुश्किल होगा ना?
मुश्किल तो होगा अंजलि, लेकिन नामुमकिन नहीं। ऐसे समय में उस महिला को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना होगा ताकि वो परिवार के दूसरे सदस्यों को संभाल सके, साथ ही घर संभालने के लिए उसे कुछ काम भी करना होगा।
पर भैजी, ऐसी परिस्थिति में अचानक काम धंधा मिलना तो बड़ा मुश्किल होगा।
इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि महिलाओं को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, और कुछ काम तो ऐसे हैं जिन्हें वो घर पर बैठकर भी कर सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं। अगर पति के साथ रहते हुए उन्होंने इसकी शुरुआत नहीं की है तो कम से कम उसके शहर जाने के बाद तो इसकी योजना जरूर बना लेनी चाहिए कि वो घर पर बैठकर या फिर कुछ अन्य महिलाओं के साथ मिलकर समूह बनाकर काम धंधा करे,
ताकि ईश्वर न करे कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसा समय आता है तो आप उसका आसानी से मुकाबला कर सके।
बिल्कुल बिल्कुल, काफी समझदार हो गई है अंजलि।
भैजी, ये मेरे साथ रहती है ना, तो अब कुछ तो असर आएगा ही इस पर भी। तो दोस्तों, ये था हमारा भैजी से आपके जीवन की मुश्किलों से जुड़ा सवाल,
जिसका हल भैजी ने दिया है निकाल।
तो मुझे उम्मीद है कि भैजी की इस बात पर आप जरूर गौर करेंगे और उसे अपने जीवन में अपनाएंगे भी। दोस्तों, काम की बात में आज हम बताने वाले हैं कुछ वयस्क शिक्षा कार्यक्रम और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के बारे में,
जिनकी मदद से महिलाएं न सिर्फ शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ी भी हो सकती हैं।
महिलाओं के आर्थिक विकास पर काम करने वाली संस्थाओं में से एक है विकासिनी।
दोस्तों, विकासिनी एक ऐसी संस्था है जो कि पश्चिमी दिल्ली में स्थित झुग्गियों और पुनर्स्थापित कॉलोनियों की महिलाओं के लिए कार्य कर रही है। विकासिनी ने महिलाओं की शिक्षा और उनके आर्थिक विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए हुए हैं,
जिनमें से एक है सबला शिक्षा। ये 6 महीने की अवधि वाला एक छोटा सा शिक्षा कार्यक्रम है, जिसका मकसद निरक्षर महिलाओं में लिखने, पढ़ने और गणना करने की क्षमता को विकसित करना है और उन्हें इस स्तर तक तैयार करना है कि वो स्वयं धन कमाने में सक्षम हो सकें।
इसके अलावा एक और कार्यक्रम है जिसका नाम है कर्मिणी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। कर्मिणी यानी के कामकाजी महिला, ये भी 6 महीने की अवधि का छोटा सा कार्यक्रम है। इसमें महिलाओं और लड़कियों को व्यवसायिक और उत्पादन संबंधी ज्ञान प्रदान किया जाता है।
इसके अलावा भी विकासिनी ने कुछ और ऐसे कार्यक्रम चलाए हुए हैं, जिनका प्रशिक्षण लेकर महिलाएं और लड़कियां खुद को फैक्ट्री में और ब्यूटी पार्लर्स में काम करने के लिए तैयार कर सकती हैं।
अगर आप विकासिनी से संपर्क करना चाहते हैं, तो आप जनकपुरी स्थित इसके कार्यालय में फोन कर सकते हैं। यहाँ के फोन नंबर है 011-28-52-1190 और 28-52-4752।
और दोस्तों, इसी तरह की एक और संस्था है जिसका नाम है डी विरमानी एजुकेशन ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी। इस संस्था द्वारा दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर 31 शिक्षा केंद्र चलाए जा रहे हैं।
और मजे की बात ये है कि इन शिक्षा केंद्रों में पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है।
क्या टीचर्स नहीं है?
हाँ, क्योंकि पढ़ाई होती है कंप्यूटरीकृत प्रोग्राम के जरिए।
भाई, अगर मेरे समय में ऐसे प्रोग्राम होते तो कम से कम मैं टीचर्स की डांट खाने से तो बच ही जाता।
ओह, तो तुम्हें स्कूल में अपने टीचर्स से डांट भी खानी पड़ती थी?
क्या करूं, अब तुम्हारी तरह सीधा साधा बच्चा तो था नहीं।
अच्छा, दोस्तों अगर आप भी नरेन की तरह डांट नहीं खाना चाहते तो फटाफट विरमानी ट्रस्ट का फोन नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 011-23-84-02-24।
तो दोस्तों, ये तो थी काम की बात,
लेकिन इससे जुड़े किसी भी सवाल या और किसी जानकारी के लिए आप हमारे फोन नंबर पर SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9197176782-23।
और दोस्तों, अब आ चुका है सेगमेंट आपकी चिट्ठी,
और इसमें हम आपको बताएंगे उन विजेता का नाम जिन्होंने अपने खट्टे मीठे अनुभव के जरिए जीत लिया है आज का इनाम।
तो दोस्तों, आज के विजेता हैं सुरेश दुआर रोहतक से।
ये लिखते हैं कि मैंने रेडियो पर आपका कार्यक्रम जब चले शहर की ओर सुना। वास्तव में ये कार्यक्रम प्रवासी भाइयों के लिए बहुत उपयोगी व ज्ञानवर्धक है। नरेन, अपनी चिट्ठी में इन्होंने अपना खट्टा और मीठा दोनों तरह का अनुभव लिखकर भेजा है हमें। अपने बुरे अनुभव के बारे में ये लिखते हैं कि 10+2 करने के बाद मुझे 2 वर्ष के कोर्स के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ा। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो वहां रिक्शा वाले से किसी सस्ते लॉज तक जाने के लिए 15 रुपए किराया तय हुआ, लेकिन रिक्शा वाले ने लॉज पर पहुंचाकर मुझसे 20 रुपए वसूल किए। आगे ये लिखते हैं कि लॉज पहुंचने पर वहां के मालिक ने बताया कि सिंगल रूम तो खाली नहीं है, आप डबल बेड वाले रूम में ठहर जाओ, जिसका एक दिन का किराया 100 रुपए है। मैं वहां से वापस जाने लगा तो मालिक ने कहा कि आपसे सिंगल रूम के हिसाब से किराया ले लेंगे। उन्होंने मुझसे 200 रुपए एडवांस जमा करवा लिए। 2 दिन के बाद मुझे वहां किराए पर कमरा मिल गया। मैंने लॉज के मालिक से अपने 100 रुपए वापिस मांगे तो उन्होंने कहा कि अगर कम से कम 3 दिन रहते तो आपसे सिंगल रूम के हिसाब से किराया ले लेता। बहुत बहस करने के बाद भी मुझे अपने पैसे वापिस नहीं मिले। लेकिन नरेन आगे ही अपनी चिट्ठी में एक अच्छा अनुभव भी लिखते हैं। ये लिखते हैं कि एक बार कॉलेज में परीक्षा की फीस के 800 रुपए 10 दिन के अंदर जमा करवाने थे। घर का फोन खराब होने के कारण मेरा घर पर संपर्क नहीं हो पा रहा था। मुझे परेशान देखकर मकान मालिक ने फीस जमा करवाने के लिए मुझे 800 रुपए दिए और मुझसे ये भी कहा कि तुम अपने शहर, अपने माता पिता से दूर यहाँ आए हुए हो, यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमें बता दिया करो। इस घटना ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया।
तो सुरेश जी, अपने अच्छे सुझाव हमारे प्रवासी श्रोताओं के साथ बांटने के लिए धन्यवाद और बधाई भी, क्योंकि आपने जीता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग। तो दोस्तों, सुरेश जी की तरह आप भी जीत सकते हैं ऐसा ही आकर्षक इनाम। बस इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए। आप हमें अपनी चिट्ठियां इस पते पर भेज सकते हैं, कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
साथ ही आप अपने अनुभव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shaharkior@gmail.com। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, और हम धन्यवाद करते हैं फोर्ट फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस का, जिंके वित्तीय सहयोग से आइडिया सिंह मीडिया कंबाइन इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा है।
अंजलि, बॉर्डर पर तैनात हमारे फौजी हों या शहर में रह रहे हमारे प्रवासी भाई, दोनों की जिंदगी में एक बात बिल्कुल एक जैसी होती है।
वो क्या नरेन?
भाई, दोनों ही अपने परिवार वालों को संदेश भेजना चाहते हैं और दोनों को ही अपने परिवार वालों के संदेशों का बेसब्री से इंतजार होता है।
ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही नरेन। तो फिर चलो, देर किस बात की, आइए सुनते हैं कि आज हमारे श्रोताओं ने क्या क्या संदेश भेजे हैं।
मेरा नाम पूजा बिजलवाण है, मैं चम्बा में रहती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड बबीता नेगी को संदेश देना चाहती हूँ। हाय बबीता, तुम कैसी हो? तुम्हारी फैमिली कैसी है? दादाजी लोग क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, और लक्ष्मी दीदी की शादी बताना, तुम मुझे मिले, प्लीज़ मुझे फ़ोन करना और मिलने के लिए पता बताना।
मेरा नाम शिवराज लाल, ग्राम बणज। तो मैं संदेश तो दियो कि मेरा मौसा जी ने पौड़ी माँ और हेड कांस्टेबल तक, तो मैं उनते यो संदेश दियोन जान कि जब तुम घर वाले हमारे यहाँ भी आया और हम दगड़ी भी जो ची देखे जो आजकल फर्स्ट क्लास मौसम भी चलनु और बारिश भी नहीं होनी, और लगे महीने में आजकल बच्चा बुच्चा साफ जो खेल कूद में जो अच्छु भाग दौना छ।
नमस्ते, मेरा नाम पूनम रावत, ग्राम बणज, पोस्ट मिसकंडी, जनपद रुद्रप्रयाग। मैं अपना भेजी संतन सिंह ते संदेश देना चाहूँ जो कि फरीदाबाद में रहन। भेजी तुम ते मेरे प्रणाम, और तुम्हारी तबियत कंची, घर फोन भी सब ठीक ठाक चीनी, लवाई मनाई होनी। जब बेटी तुम जाए तुम उन संपर्क भी नहीं करी, अगर मेरी आवाज़ सुना वाला तो जरूर संपर्क करा, घर में भी सब ठीक चीन और तुम भी तक मैं ठीक रहो। धन्यवाद।
तो दोस्तों, ये तो थे आज के संदेश,
और अगर आप भी अपना कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर SMS कर दीजिए, हम आपके संदेशों को रिकॉर्ड करके अपने कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे।
हमारा नंबर है 9197176782।
और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और आप उन्हें हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो आप उन जानकारियों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेज दीजिए, हम उन जानकारियों को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे ताकि हमारे बाकी प्रवासी श्रोता भी उनका लाभ उठा सकें।
साथ ही आप मिलजुल कर अपना क्लब तैयार कीजिए, और अगर आप पहले से ही किसी क्लब से जुड़े हुए हैं तो उसके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की जानकारियां हमें भेजिए।
और हाँ, अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों के साथ चिट्ठियां लिखना और ईमेल करना हरगिज ना भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस और पता आप एक बार फिर नोट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है shaharkior@gmail.com, यानी shaharkior@gmail.com।
और हमारा पता है कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का,
लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।